पाठ 19 अध्याय 15 निष्कर्ष। आज हम गिनती अध्याय 15 में आगे बढ़ेंगे और इसे निष्कर्ष पर ले आएंगे। पिछले सप्ताह मुख्य चर्चा शायद उस व्यक्ति की थी जिसे सप्त के दिन लकड़ियाओं जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए मार दिया गया था, और हमने पाया कि उस व्यक्ति को वास्तव में दो दंड दिए गए थे। पहला, सप्त के नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक नागरिक न्यायिक दंड, और वह दंड था पत्थर मारकर शारीरिक मृत्यु। दूसरा दंड ईश्वरीय मूल का था, अर्थात इसे ईश्वर ने पूरा किया, और इब्रानी में इसे कैरेट कहा जाता है। अपने सरलतम अंग्रेजी अर्थ में कैरेट का अर्थ है काट दिया जाना। ये दोनों दंड मिलकर ईसाई धर्म के उस बुनियादी सिद्धांत को दर्शाते हैं कि मनुष्य के रूप में हम एक भौतिक घटक और एक आध्यात्मिक घटक से मिलकर बने हैं। ईश्वर आमतौर पर मनुष्यों अपने नैतिक नियमों और आज्ञाओं के माध्यम से, और मानवीय सरकारों को उल्लंघन या नैतिक नियमों के लिए दंड के भौतिक पहलू से निपटने देता है। लेकिन मनुष्यों के आध्यात्मिक घटक पर दंड देना केवल ईश्वर के हाथों में है, क्योंकि अंत में यह सबसे विनाशकारी और स्थायी कार्रवाई है, और इस प्रकार इसे केवल मनुष्यों के निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चर्च या धार्मिक संस्था से बहिष्कृत होना आम बात है, लेकिन समूह के नेता चाहे जो भी दावा करें, यह केवल एक भौतिक सांसारिक कार्य है। केवल ईश्वर के पास ही आपके और उनके बीच के रिश्ते, जो कि कैरेट है, को खत्म करने का अधिकार है, और यह विघटन आध्यात्मिक रूप से पूरा होता है, किसी मानव के आदेश या घोषणा से नहीं। आज हम एक ऐसी युक्ति की ओर बढ़ते हैं जिसे यहोवा ने लोगों को उनके नियमों का पालन करने में, इन गलतियों से बचने में सहायता करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य से निर्देशित किया था, और वह युक्ति इब्रानी में झालर है। झालर में वह सब कुछ है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, या जो यहां गिनती में इन दो आयतों में कहा गया है। आइए झालर और उसके उद्देश्य के बारे में गिनती 15 के इस छोटे से भाग को पुनः पढ़ें। गिनती पुनः पढ़ें 15:37 अंत। इब्रानी संस्कृति के सबसे प्राचीन युग में झालर का शाब्दिक अर्थ कमोबेश बालों का गुच्छा था। वास्तव में झालर बालों के एक ताले जैसा दिखता है, और आधुनिक शब्दों में यह बहुत हद तक उस चीज जैसा दिखता है जिसे हम लटकन कहते हैं। लेकिन बेशक प्राचीन समय में लटकन की शुरुआत सिर्फ बालों के सजावटी ताले के रूप में हुई थी। तोरा में हमें इस तरह की कई चीजें मिलती हैं। झालर की अवधारणा पूरी तरह से नया आविष्कार नहीं थी, बल्कि यह पहले से मौजूद किसी चीज का विकास और परिवर्तन था। एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से प्राचीन नक्काशी और चित्रलेख दिखाते हैं कि कपड़ों पर लटकन पहनना काफी व्यापक था। हालांकि जहां तक किसी को पता है, लटकनों के लिए इब्रानी उद्देश्य झालर अद्वितीय था, और झालर के लिए यह घोषित उद्देश्य गिनती 15:39 में दिया गया है कि जब इजरायली उन्हें देखेंगे तो यह उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं की याद दिलाएगा। और इसलिए हम देखते हैं कि यह निर्देश उस आदमी की कहानी से कैसे जुड़ा है जो जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करता था। झालर का उद्देश्य लगातार पहना जाने वाला एक अनुस्मारक होना था कि परमेश्वर के नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि इसराइली प्रभु के विरुद्ध पाप न करें और इस प्रकार कानून के अभिशाप के अधीन न हो। झालर को कैसे बनाया और पहना जाना चाहिए, इस बारे में ज्यादातर विवरण परंपरा से जुड़े हैं। हमें बाइबल के प्राथमिक निर्देश यही गिनती 15 में मिलते हैं, और इस विषय पर बहुत कम कहा गया है। हालांकि अगर हमें आज झालर के महत्व को समझना है, तो हमें पुराने नियम के लेखकों की समझ से शुरू करना होगा कि किसी के परिधान के किनारे पर या उस पर जो पहना जाता था, वह समुदाय में उसकी स्थिति का संकेत था। इससे भी ज्यादा अब कृपया इस पर ध्यान दें, किसी के परिधान के किनारे को उसके अपने व्यक्तित्व और अधिकार के विस्तार के रूप में देखा जाता था। हेम बाइबल के युग का आम स्टेटस सिंबल था पूरे मध्य पूर्व में, और यहां तक कि कुछ पहले के समय में भी। वजद अब आप शायद उपहास करते हुए कहें कि किसी परिधान का हेम स्टेटस सिंबल के रूप में किसी के व्यक्तित्व का विस्तार है। निश्चित रूप से हम दुनिया की प्रत्येक संस्कृति में अलग अलग तरीकों से ही यही काम करते हैं। अमेरिका में आमतौर पर हम मानते हैं कि हम जो कार चलाते हैं या हम जो कपड़े चुनते हैं उसका ब्रांड इस बारे में कुछ बताता है कि हम अंदर कौन हैं। ईसाई अक्सर अपनी कारों पर बम्पर स्टिकर और विभिन्न धार्मिक चिन्ह चिपकाते हैं ताकि हमारे विश्वासों के बारे में कुछ बताया जा सके। या हम क्रॉस या दाऊद के सितारे या वह तीन भाग वाला प्रतीक या अन्य चीजें पहनते हैं जो हमारे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का दृश्यमान विस्तार है। और यह भी मत सोचिए कि कुछ लोग सेंट क्रिस्टोफर के पदक बल्डी कंगन और इसी तरह के इन प्रतीकों के बारे में अंधविश्वासी नहीं है। परिधान के हेम ने अधिक प्राचीन समय में भी इसी तरह की भूमिका निभाई थी। प्राचीन अक्कादियन दस्तावेजों से पता चलता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के वस्त्र का किनारा काट देता है तो वह उसे तलाक दे देता है। जादूगर किसी राक्षस से ग्रस्त व्यक्ति के कटे हुए वस्त्र के टुकड़े पर मंत्र पढ़ सकता है, इसलिए माना जाता है कि वह किनारा उस व्यक्ति का शाब्दिक विस्तार है। और निश्चित रूप से हम पाते हैं कि कुछ प्रसिद्ध बाइबल की कहानियों में वस्त्र के किनारों का उल्लेख किया गया है। हालांकि वास्तव में हम ईसाइयों के पास कुछ अजीब धारणाएं हैं कि क्या संकेत दिया जा रहा था, जैसे कि बाइबल युग का कोई व्यक्ति इसके बारे में हमारे विचारों को सुनता तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। हम कुछ ही देर में इनमें से एक कहानी पर चर्चा करेंगे। हालांकि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हजारों साल पहले कपड़ों के हेम का वास्तविक कानूनी महत्व था। वे सिर्फ स्टेटस सिंबल से कहीं ज्यादा थे, कई मामलों में वे वैध पहचान थे। इस प्रकार राजा और बहुत बड़े नेता बहुत जटिल हेम पहनते थे जिसमें अक्सर बैंगनी रंग का इस्तेमाल होता था। बैंगनी रंग मध्य और सुदूर पूर्वी संस्कृतियों में राजसीपन का प्रतीक था और आज भी है। और समय के साथ बैंगनी रंग को शाही रंग के रूप में इस्तेमाल करने की प्रथा व्यावहारिक रूप से दुनिया भर में फैल गई। वास्तव में मेसोपोटामिया में पाए गए लिखित अभिलेखों से पता चलता है कि एक दृष्टा या बुद्धिमान व्यक्ति राजा को न केवल अपने दर्शन या भविष्य सूचक सपने के बारे में राजा को बताना था बल्कि उसे लिखना भी था। एक बार लिखित दस्तावेज को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता था, साथ ही उस दृष्टा के सिर के बालों का एक गुच्छा और उसके वस्त्र के किनारे का एक टुकड़ा भी। यह शपथ और नोटरीकृत हलफनामे के बराबर था और दर्ज की गई बात की सत्यता को दर्शाता था। इसलिए झालर में हम दो प्राचीन प्रतीकात्मक तत्वों के बीच सम्मिश्रण देखते हैं, बालों का गुच्छा और वस्त्र का किनारा। लेकिन हमें यह भी पहचानना होगा कि मुख्य रूप से राजघराने और कुलीन वर्ग के लोगों के पास विस्तृत परिधान के किनारे थे, आम लोगों के पास नहीं। औसत आम व्यक्ति को अपनी हैसियत दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी और न ही वह ऐसा कर सकता था। इसलिए हमें इस समीकरण में यह भी जोड़ना चाहिए कि प्राचीन दुनिया में हैसियत के साधन के रूप में हेम की अवधारणा, जो परमेश्वर के निर्देश पर झालर में विकसित हुई, को भी आम तौर पर राजसीपन और कानूनी अधिकार का संकेत माना जाता है। अब आइए इसे इब्रानी भाषा के झालर पर लागू करें। मूल रूप से झालर हेम का ही एक विस्तार है। ध्यान दें कि झालर को परिधान के कोनों पर पहनने का आदेश दिया गया है। इसे आम तौर पर बाहरी परिधान के रूप में लिया जाता है जो कुछ दिखाई देता है। हालांकि सभी इब्रानी संप्रदाय इसे स्वीकार नहीं करते हैं और कई लोग इसे अपने बाहरी परिधानों के नीचे पहनते हैं। इब्रानी शब्द का अनुवाद आमतौर पर कोनों, जैसे परिधान के कोनों के रूप में किया जाता है, वह है कनाफ। और कनाफ का अधिक सही अर्थ है छोर या पंख, न कि कोने। विचार यह है कि हेम किसी भी परिधान का छोर है, इसलिए ऐसा नहीं है कि झालर सीधे परिधान के हेम का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि झालर को परिधान के हेम से जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि यह वास्तव में सदियों से कैसे प्रकट हुआ यह अलग अलग रहा है। दाऊद और शाऊल के बारे में एक पुराना नियम कहानी है जो प्राचीन दुनिया में कम से कम इसराइल के राजाओं के शुरुआती युग में परिधान के किनारों के अर्थ को दर्शाती है। मानसिक रूप से अस्थिर इसराइल के राजा शाऊल ने तय किया है कि उसे दाऊद को मारना होगा और दाऊद इसराइल के उत्तरी भाग से लगभग 600 आदमियों के एक दल के साथ भागकर इसराइल के दक्षिणी रेगिस्तानी इलाकों में पहुंच गया है। उस क्षेत्र को आज ईन गेदी कहा जाता है जो मृत सागर के बहुत करीब है। आइए पहला शमूएल 24 से कहानी पढ़ें। पहला शमूएल 24 का 1-8 पढ़ें। दाऊद और उसके आदमी शाऊल द्वारा दाऊद को खोजने के लिए भेजे गए गश्ती दल से बच रहे हैं और मृत सागर से सटे ईन गेदी के चारों ओर बंजर पहाड़ों पर बनी कई गुफाओं में छिप रहे हैं। बाइबल में विस्तृत विवरण में बताया गया है कि शाऊल शौच के लिए एक गुफा में भटक गया इस बात से अनजान कि यह वही गुफा है जहां दाऊद और उसके आदमी छिपे हुए थे। जब राजा शाऊल यह सब कर रहा था तब दाऊद चुपके से शाऊल के पीछे आ गया और शाऊल के वस्त्र के किनारे का एक हिस्सा सावधानी से काट दिया। बाद में दाऊद को अजीब तरह से अपने इस काम पर पछतावा हुआ और उसने अपने आदमियों से कहा, परमेश्वर न करे कि मैं ऐसा कुछ करूं। बाद में जब दाऊद को शक्ति प्राप्त हुई, शाऊल के साथ शाऊल के दुर्लभतम सुस्पष्ट क्षणों में से एक में राजा शाऊल ने दाऊद द्वारा अपने वस्त्र का किनारा काटने के कृत्य पर यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, अब मैं जानता हूं कि तुम राजा बनोगे। कितनी अजीब परिस्थितियां थीं और उससे भी अजीब प्रतिक्रियाएं। इस कहानी की पूरी कुंजी शाऊल के वस्त्र के किनारे पर स्थित अधिकार के प्रतीक के वास्तविक मुद्दे को समझना है। इससे भी अधिक यह उस मामले से अलग नहीं है जब दलीला ने शिमशोन के बालों के ताले काटने की साजिश रची थी। शाऊल और दाऊद और उस युग के हर एक व्यक्ति के लिए किनारा एक प्रतीक से कहीं अधिक था। यह शाऊल का विस्तार था, यह उसके व्यक्तित्व और उसके शाही सार का विस्तार था। दाऊद द्वारा उस हेम के टुकड़े को चुपके से हटाने से शाऊल ने इसे राजा के अधिकार का खुद से दाऊद को ईश्वरीय रूप से तैयार किया गया हस्तांतरण माना और शिमशोन के साथ अपने सादृश्य को जारी रखते हुए बालों के उन लटों को हटाने से शिमशोन के लटकन, अगर आप चाहें तो शिमशोन ने ईश्वरीय अधिकार और शक्ति से अपना संबंध खो दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह शिमशोन के बालों का कट जाना उसके ईश्वर से अलग होने का प्रतीक था, उसी तरह शाऊल ने अपने हेम के कट जाने को इज़राइल के राजा के रूप में अपनी ईश्वरीय स्थिति से अलग होने के रूप में देखा। झालर का बहुत बड़ा अर्थ है। इसे दो अलग अलग तरह की सामग्रियों से बनाया जाता है, लिनन और ऊन। प्रत्येक झालर में ऊन का एक धागा होता है जिसे शाही नीले या शाही बैंगनी रंग में रंगा जाता है, जो बीच में होता है, और उसके चारों ओर सफेद लिनन के कई धागे होते हैं। नीले रंग के उस एक ऊनी धागे को टेकलेट कहा जाता है और यह झालर के अर्थ के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुलीनता को दर्शाता है। रॉयल ब्लू या रॉयल पर्पल को रॉयल क्यों माना जाता था? क्योंकि पर्पल बनाना सबसे मुश्किल और इसलिए बहुत महंगा रंग था। नतीजतन केवल शाही और अमीर लोग ही इसे खरीद सकते थे। 200 ईसा पूर्व के रोमन अभिलेखों में इस बैंगनी रंग के लगभग 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम के लिए आधुनिक समय के बराबर भुगतान लगभग $100,000 है। इसका कारण यह है कि बैंगनी रंग की सबसे अच्छी गुणवत्ता म्यूरेक्स घोंघा नामक एक छोटे से समुद्री जीव से निकाली गई थी, लेकिन इस बैंगनी रंग के 2 ग्राम से भी कम उत्पादन के लिए लगभग 12,000 घोंघों की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से मांग के कारण बहुत कम समय में एक बहुत सस्ता, हालांकि बहुत घटिया नीला बैंगनी रंग विकसित किया गया था, लेकिन अभिजात वर्ग और राजघराने कभी इसका इस्तेमाल नहीं करते थे और रब्बियों ने टेकलेट बनाने के लिए इस घटिया रंग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब आइए 1 मिनट रुकें और सोचें। रब्बी कहते हैं कि झालर को ऊन और लिनन के मिश्रण से बनाया जाना चाहिए। क्या यह कोई घंटी बजाता है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि लेव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में प्रभु ने आदेश दिया है कि इब्रानियों को अलग अलग तरह के धागों के मिश्रण से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लिनन, जो सन के पौधे से आता है, और ऊन, भेड़ से आता है, को कभी भी एक ही कपड़े में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी यहां झालर उस निषिद्ध मिश्रण से बना है जिसे इब्रानी में शा अतनेज कहा जाता है। अब निश्चित रूप से ऊन और लिनन के मिश्रण शा अतनेज का उपयोग करके झालर बनाने के बारे में बाइबल में विशेष रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन बहुत प्राचीन इब्रानी संतों और बाद में रब्बियों ने सटीक रूप से शा अतनेज का आह्वान किया और दावा किया कि यह मूसा के दिनों से ही ऐसा ही था। कुछ समय पहले इज़राइल की एक गुफा में कुछ प्राचीन झालर पाए गए थे जो काफी हद तक बरकरार थे तथा जिनका इतिहास बार कोचबा विद्रोह लगभग 135 ईस्वी के समय का है, और इन झालर के उपयोग को सत्यापित किया सफेद लिनन धागों के साथ ऊनी टेबलेट। अब यहां दिलचस्प बात यह है, परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिश्रित धागों के वस्त्र पहनने की अनुमति न देने के दो कारण बताए हैं। एक, यह टेवल यानी उलझन का प्रतीक है, और दो, केवल पुजारियों को शा अतनेज पहनने की अनुमति है। मिश्रित धागों वाले वस्त्र, दूसरे शब्दों में धागों को मिलाने की अनुमति केवल पुरोहितों के वस्त्रों के लिए थी।
अब मैं आपको यहूदी मित्रों, खास तौर पर इब्रानी विद्वानों से सलाह लेने का महत्व बताता हूं, जब पुराने नियम के कुछ अंशों को उनके उचित संदर्भ में समझने की बात आती है। मुझे आपके लिए बाइबल में सबसे खराब तरीके से अनुवादित आयतों में से एक पढ़ने की अनुमति दें। अपनी बाइबल में व्यवस्था विवरण 22:9 खोलिए, क्योंकि जब आपके पास अलग अलग संस्करण होंगे तो आपको अलग अलग रीडिंग मिलेंगी। व्यवस्था विवरण 22:9, तू अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना, कहीं ऐसा न हो कि जो बीज तूने बोया हो उसकी सारी उपज और दाख की बारी की सारी उपज अशुद्ध हो जाए।
काफी सरल है, सिवाय इसके कि उस आयत में अंतिम शब्द के साथ एक समस्या है। जिस शब्द का अनुवाद अशुद्ध के रूप में किया गया है वह बिल्कुल गलत है। यहां जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद किया जा रहा है वह कदाश है, और कदाश का अशुद्ध होने से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। कदाश का अर्थ है पवित्र, अलग रखा जाना, पवित्र बनाया जाना। बाइबल में कदाश का इस्तेमाल कई बार किया गया है। यह एकमात्र ऐसा समय है जब ईसाई विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ इसके सामान्य और सटीक अर्थ पवित्र के विपरीत बनाने का फैसला किया। यहूदी विद्वान बेहतर समझते हैं कि यहां क्या हो रहा है, और इसलिए यंग के शाब्दिक अनुवाद में अपवित्र के बजाय अलग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत करीब है लेकिन फिर भी बात को ठीक से नहीं समझा पाता है।
दूसरे शब्दों में दो तरह के बीजों को एक साथ बोने की समस्या, जो दो तरह के धागों को एक साथ मिलाने के निषेध से जुड़ी है, यह है कि ऐसा करने से वे पवित्र हो जाते हैं और इसीलिए केवल मंदिर सेवा के लिए उपयुक्त होते हैं, जिसे केवल पुजारी ही कर सकते हैं। यह टॉम ब्रेडफोर्ड का सिद्धांत नहीं है। रशी और इब्न एजरा जैसे अन्य महान इब्रानी संत इस बिंदु पर पूरी तरह से सहमत हैं। अब क्या वे अपनी व्याख्या में सही हैं? खैर, मुझे नहीं पता कि हम पूरी तरह से निश्चित हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से पवित्र शास्त्र के शाब्दिक पढ़ने और इब्रानी अनुष्ठान की उनकी अद्वितीय समझ पर आधारित है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए ये कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक की पगड़ी या मित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। निर्गमन 39 का 28 और 39 में साधारण याजकों के कमरबंद और महायाजक के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सजी हुई टोपियां और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की सनी की जांघियां 29 और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की कमरबंद और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े जो बुनकर का काम हो जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी।
इस पद्य दोहे का दूसरा भाग महत्वपूर्ण है जहां यह कहने के बाद बढ़िया बटी हुई सनी के कपड़े के बाद नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े से पहले और शब्द डाला गया है जो रंगीन कपड़े से बढ़िया सनी को अलग करता है। जब कोई पुजारी के वस्त्र बनाने के बारे में कानून के सभी शब्दों को देखता है तो यह एक असामान्य शब्द निर्माण है जो सामान्य और पुजारी के वस्त्र बनाने के अन्य सभी विवरणों से अलग है। इसलिए प्राचीन रब्बियों ने कहा कि यह दर्शाता है कि नीला बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा सनी का नहीं है बल्कि वास्तव में एक और सामग्री है और वह सामग्री ऊन होनी चाहिए क्योंकि यह इब्रानियों द्वारा वस्त्र बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र अन्य सामग्री थी। अब आप और मैं चाहें तो इसके खिलाफ बहस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम मच्छरों को छान रहे हैं लेकिन तथ्य यह है कि सबसे पुराने तारगम्स और अन्य प्राचीन इब्रानी दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्होंने पुजारी के सैश और उच्च पुजारी के भव्य सिर को ढकने वाले कपड़े दो अलग अलग सामग्रियों का उपयोग करने के इस सिद्धांत के आधार पर बनाए थे। रब्बियों ने ऐसा क्यों सोचा कि पुजारी तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन सामान्य रूप से इजरायली ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर ने लेवी के पूरे गोत्र को इसराइल से अलग कर दिया था। तकनीकी रूप से लेवी अब इसराइली नहीं रहे। वास्तव में लेवी के इसराइल से अलग होने के बाद से परमेश्वर कहता है कि जिस तरह इसराइली उसके लिए गैर संरक्षित विदेशी हैं उसी तरह लेवी इसराइलियों के लिए गैर विदेशी हैं। पुजारी सामान्य इजरायली आबादी से अलग थे और यह पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र पर आधारित है, जैसा कि मैंने आपको हाल के पाठों में कई बार दिखाया है। तो फिर मैंने इतनी लंबी व्याख्या क्यों की? क्योंकि झालर मिश्रित कपड़े पहनने के खिलाफ तोरह के निषेध का अपवाद है, और वे अपवाद इसलिए हैं क्योंकि रब्बियों के अनुसार झालर को विशेष पुरोहिती वस्त्रों के आधार पर बनाया गया है, जिन्हें किसी भी सामान्य इजरायली को पहनने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उनके वस्त्र पवित्र हो जाएंगे और इसकी अनुमति नहीं है। झालर इस वास्तविकता को दर्शाता है कि परमेश्वर ने पूरे इसराइल को किसी न किसी स्तर पर पवित्र घोषित किया है। लेव्य व्यवस्था 19 इसराइल से कहता है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं।
तो जिस तरह महायाजक का विशेष सिर ढकने वाला कपरा शा अतनेज मिश्रित सामग्री से बना होता है जो पवित्र होता है, उसी तरह सामान्य पुजारी का कमरबंद और सामान्य इसराइलियों द्वारा परिधान के किनारे पर पहना जाने वाला झालर भी पवित्र होता है। इस अद्भुत पदानुक्रम को देखें जो तब स्थापित होता है जब हम समझते हैं कि वास्तव में क्या कहा जा रहा है। महायाजक का सिर शा अतनेज से ढका होता है, सामान्य पुजारी की कमर या उसके शरीर का मध्य भाग शा अतनेज से ढका होता है, और आम व्यक्ति अपने घुटनों और टखनों के बीच झालर के रूप में शा अतनेज पहनता है। उच्च मध्यम निम्न यह पवित्रता के ढाल विभिन्न स्तरों को दर्शाता है, और यह अनुमति वास्तव में ईश्वर की आज्ञा आम इसराइलियों के लिए झालर पहनना इस निर्देश का भव्य प्रतीक है कि इसराइल को याजकों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र होना चाहिए। हमने पवित्रता के ग्रेडियंट या डिग्री के इस मॉडल को पहले भी देखा है। प्रमुख मॉडलों में से एक मंदिर है जहां हमारे पास पवित्रता का उच्चतम स्तर पवित्रतम कक्ष में मौजूद है। पवित्र स्थान कक्ष में पवित्रता का मध्य स्तर और बाहरी प्रांगण में पवित्रता का निम्न लेकिन फिर भी पवित्र स्तर है, जहां परमेश्वर के साधारण लोग इसराइल के सदस्य इकट्ठा हो सकते हैं। यह एक पैटर्न है, और इस प्रकार हम पवित्र शास्त्रों में कई तरीकों से इस पैटर्न को प्रतिबिंबित और प्रदर्शित होते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। झालर में एक नीला ऊनी धागा जोड़कर जो राजसीपन को दर्शाता है, इसे उसके चारों ओर सफेद लिनन के धागों के साथ जोड़कर जो पुजारित्व को दर्शाता है, दोनों को मिला दिया जाता है। हर इजरायली पवित्रता का प्रतीकात्मक माप धारण करता है। हर इजरायली में पुजारी का एक माप होता है। हर इजरायली को परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक या दूसरे माप में अलग रखा गया है। अब व्यावहारिक रूप से यह बात कि झालर को कैसे पहना जाता था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे मूल रूप से हेम स्तर पर साधारण रोजमर्रा के कपड़ों से जुड़े थे नीचे की ओर, और मुझे संदेह है कि वे गंदे हो जाते थे। उन पर पैर रखा जाता था, आसानी से खींचकर उतार दिया जाता था। आप नाम बताइए। इसलिए समय के साथ एक अलग परिधान विकसित किया गया जिसे तलित कहा जाता था। यह तलित ही था जो झालर को धारण करता था। तलित कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा था जिसके बीच में एक सिर छेद होता था, जो पहना जाने वाला आमतौर पर पीठ और सामने दोनों तरफ कमर के ठीक नीचे होता था। इस तलित के चार कोनों पर लटकन झालर झुरे हुए थे। यह तलित एक तरह का मध्य परिधान था, यह पूरी तरह से एक अंडरगारमेंट नहीं था, फिर भी आमतौर पर एक कोट जैसा बाहरी परिधान इसके ऊपर जाता था। लेकिन तलित संलग्न झालर के साथ का किनारा दिखाई देता था। बाद में कुछ इब्रानियों, सभी नहीं, ने तलित को और संशोधित किया जब तक कि यह एक अलग वस्त्र नहीं बन गया जिसे हम अब प्रार्थना शॉल कहते हैं। यह एक बड़े सिर को ढकने वाले कपड़े या पोर्टेबल प्रार्थना बूथ जैसा कुछ था, और झालर बहुवचन को प्रार्थना शॉल के चार कोनों से जोड़ा गया था। संप्रदाय के आधार पर झालर और तलित आज उपरोक्त सभी का कुछ संयोजन या अन्य है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि कुछ संप्रदाय उन्हें खुले में पहनते हैं जबकि कुछ उन्हें अपने बाहरी कपड़ों के नीचे पहनते हैं। इसलिए जब आप किसी यहूदी से तलित कहें तो ध्यान रखें कि वह प्रार्थना शॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। वह शायद उस मध्य परिधान के बारे में सोच रहा होगा जिसे वह अक्सर अपने कोट के नीचे पहनता है और जिससे उसकी झालर झुरी होती है।
यह सटीक परिदृश्य जिसकी हमने अभी चर्चा की है यीशु के दिनों में पूरी तरह से लागू था और नया नियम यह स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु ने झालर पहना था। इसे अधिकांश अंग्रेजी न्यू टेस्टामेंट अनुवाद फ्रिज कहते हैं। मैं आपके लिए बस कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूं।
मत्ती 9:20 और देखो, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। 21 क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मत्ती 14:34 और वे पार होकर गन्ने सरत में उतरे। 35 जब वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया तो आसपास के सारे इलाके में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास बुलवाया। 36 और उसे विनती करने लगे कि हमें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, और जितनों ने उसे छू लिया वे छंगे हो गए।
अब हम इस बात पर यथोचित बहस कर सकते हैं कि क्या यीशु के वस्त्र झालर का किनारा प्रार्थना शॉल पर था या बीच के वस्त्र से जुड़ा हुआ था या स्कर्ट वस्त्र के निचले भाग में स्थित था जो उस युग में लोगों की विशिष्ट पोशाक थी। लेकिन जो बहस योग्य नहीं है वह यह है कि यह किनारा झालर था। इब्रानी लोगों द्वारा हेम पर पहने जाने वाले किसी अन्य प्रकार के फ्रिज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुलीन वर्ग के हेलेनिस्ट यहूदियों को छोड़कर जिन्होंने रोमन तरीकों को अपना लिया था।
मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, यह प्रथा सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं थी। महिलाएं झालर पहनती थीं और पहनती हैं। हालांकि जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है यह प्रथा एक यहूदी संप्रदाय से दूसरे में भिन्न होती है। आम तौर पर महिलाओं द्वारा झालर पहनना एक व्यक्तिगत पसंद थी और है। यीशु के दिनों में भी ऐसा ही था और उस युग के दस्तावेजों में इस बात की पुष्टि अच्छी तरह से की गई है।
अब यह गैर यहूदी ईसाइयों को कैसे प्रभावित कर सकता है? ठीक वैसे ही जैसे तोरह में हम बहुत सी ऐसी बातों का सामना करते हैं जो शास्त्र और परंपरा के मिश्रण के अनुसार व्यवहार में विकसित हुई हैं। ईसाइयों को इस आदेश से कैसे निपटना है यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जबकि आम इसराइली मिश्रित कपड़ों के कपड़े नहीं पहन सकते थे, पुजारी सभी ज्ञात दस्तावेजों के अनुसार पहन सकते थे और पहनते भी थे। और विचार करें कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में हमारे नए स्थान के विषय में क्या कहा, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति पिता के सम्मुख विश्वासियों के रूप में प्रकाशित वाक्य 1:4 यूहन्ना की ओर से 7 कलीसियाओं को जो आसिया में हैं, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, 5 और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य गवाह और मरे हुओं में से जेठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, उसको जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, 6 और हमें एक राज्य और अपने परमेश्वर और पिता के लिए याजक भी बनाया, महिमा और पराक्रम युगानुयुग उसी का हो, आमीन। यूहन्ना कहते हैं कि विश्वासी ईश्वर के पुजारी हैं। हमें इस कथन को कितना शाब्दिक रूप से लेना चाहिए यह बहस का विषय है। मुझे यकीन नहीं है लेकिन मैं अधिक शाब्दिक व्याख्या की ओर झुकता हूं। सबसे शाब्दिक रूप से हमें इसराइल के पुजारियों के समान दर्जा दिया गया है। सबसे रूपक रूप में हम पुजारी जैसे हैं, इस अर्थ में कि हम मसीह में ईश्वर के सेवक हैं। मुद्दा यह है कि पुजारियों को मिश्रित सामग्री के कपड़े पहनने से पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। चूंकि ऐसा है इसलिए किसी भी आस्तिक यहूदी या गैर यहूदी को यह तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कपड़ों में मिश्रित सामग्री न पहनने का तोरह का आदेश आज हमारे लिए है या नहीं। हालांकि यह सवाल कि हमें झालर पहनना चाहिए या नहीं एक और मामला है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कम से कम यह गलत नहीं है। मुद्दा इरादा और आज्ञा में सन्निहित सिद्धांत है। झालर पहनते समय आपका इरादा क्या है? जब हम में से कई लोग क्रॉस या ऐसा कुछ पहनते हैं तो कुछ के लिए ये सिर्फ एक सजावट होती है, लेकिन दूसरों के लिए ये वास्तव में एक अनुस्मारक है कि हम कौन हैं और वह कौन है। गिनती 15 में झालर पहनने का बताया गया कारण परमेश्वर के वचन को याद रखना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है ताकि हम भटक न जाए। और ये कहता है कि हमें ऐसे काम करने की जरूरत है जो हमें लगातार याद दिलाए कि उसके प्रति आज्ञाकारिता उसके साथ हमारे रिश्ते की कुंजी है। हालांकि ये सोचना कि मोक्ष पाने के लिए या बचाए रहने के लिए या इससे हमें ईश्वर की अधिक कृपा प्राप्त होती है या यह एक जादुई ताबीज है, झालर या क्रॉस या दाऊद का सितारा पहनना आवश्यक है, यह गलत है। कानून में ईश्वर के सिद्धांतों की सांस्कृतिक रूप से आधारित अभिव्यक्ति क्या है और गैर सांस्कृतिक रूप से आधारित अभिव्यक्ति क्या है, इसका मुद्दा हमेशा समझना आसान नहीं होता। जाहिर है कि व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना और हत्या के खिलाफ निषेध सांस्कृतिक रूप से तटस्थ हैं। मिश्रित कपड़े न पहनने, हेयर स्टाइल, दाढ़ी रखने या न रखने जैसी अन्य चीजें संस्कृति में गहराई से समाहित हैं। इसीलिए हम सभी को सावधानी पूर्वक विचार करना होगा कि क्या झालर पहनने का उद्देश्य क्रॉस कल्चरल अभिव्यक्ति है या नहीं, और इस प्रकार झालर के पीछे ईश्वर सिद्धांत को अन्य तरीकों से वैध रूप से व्यक्त किया जा सकता है या नहीं। मैं जो कुछ भी पहनता हूं उससे यहोवा के सामने हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। झालर के साथ इसे पहनने का घोषित उद्देश्य तीन क्रियाओं, क्रिया शब्दों में संक्षेपित है जो गिनती 15 की आयत 39 की विशेषता है। देखो, याद करो, निरीक्षण करो। झालर को देखने से हमारे मन में परमेश्वर की आज्ञाएं याद आती हैं और इस प्रकार हमें उन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हम अगली बार गिनती 16 से शुरू करेंगे।